ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सोलुखुम्बू के थामे में हेमताल विस्फोट से हुए नुकसान की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ली जानकारी। सरकार से ओर से किए जाने वाले काम और निर्णय तत्काल करने की प्रधानमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता। अवरुद्ध राजमार्ग दो घंटे के भीतर खोलने के हिसाब से आवश्यक उपकरण और जनशक्ति की व्यवस्था मिलाने की भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय ने दी जानकारी। और भारत के बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर एक बस और मैक्स पिकअप गाड़ी में टक्कर होने से हुई 10 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने बीते श्रावण 31 गते को सोलुखुम्बू के खुम्बू पासांगलामू गांवपालिका वार्ड नंबर 5 थामे खोला में हिमताल विस्फोट से हुए नुकसान की प्रारंभिक जानकारी ली है। घटनास्थल से लौटे रक्षा मंत्री मानवीर राय, जनप्रतिनिधियों और संबंधित निकायों के उच्च पदस्थ अधिकारियों से प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय सिंह दरबार में आज प्रधानमंत्री ओली ने जानकारी प्राप्त की। जानकारी मिलने के बाद प्रधानमंत्री ओली ने केंद्र सरकार की ओर से तत्काल कार्रवाई और निर्णय लेने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। ऑन साइट रिपोर्ट में कहा गया है कि भोजन सहित राहत और मुआवजे के साथ साथ बिजली, टेलीफोन और अन्य आवश्यक सेवाएं फिलहाल संचालित की जाएगी। सोलुखुम्बू की खुम्बू पासांगलामू गांवपालिका के थामे में तत्काल विद्युत और टेलीफोन की व्यवस्था करने का संबंधित मंत्री ने निर्देश किया है। इस विषय में जानकारी प्राप्त करने के बाद संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने थामे में वैकल्पिक व्यवस्था कर तत्काल संचालन में लाने का निर्देश किया। इसी तरह ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्री दीपक खड़का ने थामे में तत्काल बिजली की व्यवस्था करने का निर्देश किया। गौरतलब है कि बीते श्रावण 31 गति दोपहर आई बाढ़ के कारण खुम्बू बिजली कंपनी के हेड वर्कर्स में क्षति पहुंची, जिसके बाद बिजली सेवा अवरुद्ध हो गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अलग अलग नामों से लोगों को भड़काकर राष्ट्रीय एकता को तोड़ने की कोशिश करने वालों को जवाब देने का खिलाड़ियों से आग्रह किया है। आज काठमांडू में नेपाल स्पोर्ट्स फेडरेशन की केंद्रीय समिति की तीसरी बैठक के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि कई प्रकार की शक्तियां राष्ट्रीय एकता को धर्म, जाति और विभिन्न नामों के आधार पर विभाजित करने और लोगों को भड़काने की कोशिश में लगी हुई है, इसलिए राष्ट्रीय एकता कायम पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ओली ने स्पष्ट किया कि कानून का पालन न करने और लोगों की लोकतंत्र की सनक का पालन करने की प्रवृत्ति समाज को खत्म कर देगी। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि समाज में भ्रष्ट लोग ही भ्रष्टाचार विरोधी होने का दिखावा करते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं और जो भ्रष्ट नहीं है उनका नाम लेकर झूठ फैलाते हैं। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक ने जबरन लापता किए गए व्यक्तियों की जांच, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तीसरा संशोधन विधेयक 2079 के प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया है। कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सभा ने सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। सभा में कानून मंत्री चौरसिया ने कहा कि सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तीसरे संशोधन विधेयक 2079 को पीड़ित मैत्री बनाया गया है। इसी तरह राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में नेपाल कानून व्यवसायी परिषद द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 सभा समक्ष पेश किया गया। बैठक में कानून मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद दूसरा संशोधन विधेयक 2081 सभा समक्ष पेश किया। इससे पूर्व सांसदों ने सोलुखुम्बू के खुम्बू पासांगलामू गांवपालिका वार्ड नंबर 5 थामे में बाढ़ से हुई क्षति के विषय में सरकार का ध्यान आकर्षण कराया था। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाइ कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415 # डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउवा भारत की नई दिल्ली पहुंची हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत के औपचारिक भ्रमण पर रही डाक्टर राणा को आज दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर भारत स्थित नेपाली दूतावास और भारत के विदेश मंत्रालय के उच्च अधिकारियों ने स्वागत किया। दो देशों के बीच आपसी हित, सहकार्य और अतिरिक्त के संबंध विस्तार के विषय पर द्विपक्षीय विचार विमर्श होगा। बता दें कि परराष्ट्र मंत्री डॉ राणा भाद्र 6 गते स्वदेश वापस लौटेंगी। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय ने कहा है कि देश के प्रमुख राजमार्गों के गड्ढे भरने और मरम्मत का काम दशहरा तक पूरा हो जाएगा। मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस साल के दशहरा की शुरुआत से पहले निर्माणाधीन राजमार्गों के अलावा अन्य राजमार्गों की मरम्मत का काम पूरा करने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री देवेंद्र दाहाल के कार्यभार संभालने के एक महीने पूरे होने के अवसर पर मंत्रालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में मंत्रालय ने कहा कि विशेष मामलों को छोड़कर बाढ़ और भूस्खलन या फिर अन्य किसी भी कारण अवरुद्ध हुए राजमार्ग को 2 घंटे के भीतर खोलने के लिए आवश्यक उपकरण और जनशक्ति हमेशा तैयार रहेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई है। जल आपूर्ति मंत्री प्रदीप यादव ने पानी लीकेज पर नियंत्रण के निर्देश दिए हैं। आज उन्होंने महाकाल और चौर जल तालाब थोक वितरण प्रणाली निर्माण परियोजना, बागमती कॉरिडोर, गोकर्ण और अपशिष्ट जल प्रशोधन केंद्र गुहेश्वरी का निरीक्षण करने के बाद बताया कि काठमांडू में विभिन्न स्थानों पर पानी का रिसाव हो रहा है और इसे नियंत्रित करने और पानी वितरण करने का निर्देश दिया। मंत्री यादव ने बताया कि पानी के पाइप फटने से मल के साथ गंदा पानी भी सप्लाई हो रहा है, इसलिए सावधानी बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने महाकाल चौर में निर्माणाधीन नए तालाब को समय पर पूरा करने का निर्देश किया। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल प्रचंड ने कहा कि जनता के मुद्दों की रक्षा करने के लिए सड़क और सदन से प्रभावकारी कदम उठाएंगे। पार्टी केंद्रीय कार्यालय पेरिस डाड़ा में माओवादी के पूर्व केंद्रीय सदस्य एवं शहीद रामवृक्ष यादव की स्मृति दिवस के अवसर पर आज आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही। उदयपुर की त्रियोगा नगर पालिका वार्ड नंबर 6 चूरे जंगल में आज गाड़ी दुर्घटना होने से एक महिला की मौत हो गई, वहीं 18 लोग घायल हो गए। मरने वाले त्रियोगा नगर पालिका वार्ड नंबर 3 मोतीगढ़ा की 50 वर्षीय गीता कार्की शामिल है, ये जानकारी पुलिस ने दी। बता दें कि घायलों में से 3 की हालत गंभीर है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर बस और मैक्स पिकअप गाड़ी में टक्कर हो गई। बुलंद शहर के जिलाधिकारी सीपी सिंह ने हादसे के बारे में पूरी जानकारी दी है। सीपी सिंह ने कहा है कि आज एक पिकअप गाड़ी गाजियाबाद के संभल की तरफ जा रही थी और एक बस बुलंद शहर की तरफ आ रही थी। सलेमपुर थाने के पास दोनों वाहनों में टक्कर हो गई। उन्होंने समाचार एजेंसी ANI को बताया है कि दोनों वाहनों के बीच हुई टक्कर में कुल 37 लोग घायल हुए थे, जिसमें से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 27 लोग घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रहा। अंतिम बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सोलुखुम्बु के थामे में हेमताल विस्फोट से हुए नुकसान की प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने ली जानकारी। सरकार की ओर से किए जाने वाले काम और निर्णय तत्काल करने की प्रधानमंत्री ने जताई प्रतिबद्धता। अवरुद्ध राजमार्ग 2 घंटे के भीतर खोलने के हिसाब से आवश्यक उपकरण और जनशक्ति की व्यवस्था मिलाने की भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्रालय ने दी जानकारी। और भारत बुलंदशहर के सलेमपुर बदायूं मार्ग पर एक बस और मैक्स पिकअप गाड़ी में टक्कर होने से हुई 10 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।